तब फिर युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। कभी कभी ट्यूबलाइट जैसा चालू होता है, बरसों पहले पढ़ा हुआ श्लोक था, अन्य मत का है, महाभारत का। तो उसमें क्या है कि युधिष्ठिर से यक्ष तीन प्रश्न करता है। अब उन तीन प्रश्नों में ये जो प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तब फिर युधिष्ठिर यही कहता है, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। यमराज के घर दिन प्रतिदिन संसारी प्राणी जाते रहते हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो शेषा जीवितुम इच्छन्ति, वो जीने की कामना करते हैं। किम आश्चर्य मत पर, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है संसार में, कि रोज लोग मर रहे हैं लेकिन जो जिंदा है वो सोचते हैं कि हम जिंदा रहे। उनको अपने क्रम का, अपने नंबर का कभी भी ख्याल नहीं आता, और फिर उनको ऐसा लगता भी नहीं कि अभी मेरा नंबर है, जबकि किसी को मालूम नहीं है कि किसका कब नंबर है, लेकिन तो भी सोचते हैं कि अभी मेरा नंबर तो बाद में आए। तो किम आश्चर्य मत परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। अब ये बड़ी मजेदार गाथा है, 28वीं गाथा। आउ खैण मरणम आउं दाउं न सक्कदे कोवी तम्मा देविंदो विय मरणाउण रखदे कोवी। मरणम आउ खेण, मरण जो होता है वो आयु के क्षय से होता है। ऐसी दो गाथाएं समय पहुड़ में भी है, आउ खेण मरणम जीवाणम जीर्ण वरे ही पंडितम, ऐसी दो गाथाएं। यहां पर कह रहे हैं आचार्य महाराज, आउ खेण मरणम, मरण आयु के क्षय से होता है, मतलब आयु नष्ट हो जाती है तो जीव मर जाता है उस पर्याय से। वैसे तो जीव नाम ही कह रहा है कि जो जीता रहे सो जीव, उस अपेक्षा से विचार करो, निश्चय से तो जीव अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन पर्याय दृष्टि से विचार करो तो मनुष्य का तो अंत हो जाता है, यानी जब जीव अपने मनुष्य शरीर को छोड़ता है तब उसको ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य मर गया। जीव का अंत तो नहीं हुआ, मनुष्य मर जाता है। तो आयु के क्षय से मरण होता है, और आउम दाउम आयु का दान करने के लिए को भी न सकते, कोई समर्थ नहीं होता। देखो किसी की आयु 70 साल की है, अब 70 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो जन जन का प्यारा है। अब सारी जनता मिलकर के सोचेगी भाई चलो हम एक एक महीने अपनी आयु हम इसको दे दें। यद्यपि कहीं किन्हीं कथाओं में लोक में ऐसा प्रचलन है कि किसी ने ऐसी प्रार्थना की कि भाई मेरी आयु इसको लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, और वैसा हो गया कि इसका प्राणांत हो गया और फिर वो मरते मरते बच गया। लेकिन केवली के ज्ञान में अपन झांक कर देखो, या फिर केवली भगवान से पूछो कि भगवान क्या वास्तविकता है। घटना ऊपर से तो ऐसी दिख रही थी कि इसने कहा कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए और वो बीमार मरता मरता बच गया, ऐसा लग रहा था कि वो जाने वाला है और ये जीने वाला है, लेकिन जीने वाला चला गया और जाने वाला जी गया। क्या बात है। तो भगवान कहेंगे कि ऊपर से जो कुछ दिख रहा था वो अन्य कर्मों के उदय से दिख रहा था, और जो घटना घटी है वो आयु कर्म के क्षय से घटी। जिसकी आयु का क्षय हो गया उसका मरण, और जिसकी आयु का उदय बना है उसका जीवन चलता रहता है। तो आयु का दान करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। तम्मा इसीलिए मरणाओ देविन दोवियन न रख दे को भी। मरण से कोई देवों का इंद्र भी साक्षात आ जाए यहां धरती पर, सौधर्म इंद्र भी अगर पहुंच जाता है किसी को बचाने के लिए, पहुंचता नहीं है, अगर पहुंच जाए तो न रख दे, बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है ना आयु। आयु आपने बांधी अपनी आयु, तो फिर किसी और का उस पर कंट्रोल कैसे हो सकता है? कोई और उसको नियंत्रित कैसे कर सकता है? उसको घटाने बढ़ाने का काम कोई दूसरा कैसे कर सकता है? बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। इस जीवन में अपनी जो आयु अपन लेकर के आए हैं पूर्व भव में बांध कर, उसकी वृद्धि इस भव में नहीं की जा सकती। पूर्व भव में मान लो आपको आयु बांधने का समय आ गया, और वो समय एक अलग व्यवस्था, आयु कर्म की एक विशेष व्यवस्था होती है। उस समय आपने आयु का बंध किया, और उसके बाद फिर जितनी आयु शेष रह गई उस भव की पुराने, तो उतने शेष समय में जो त्रिभाग आएंगे, अपकर्ष काल, सिद्धांत कर्म सिद्धांत में ये शब्द आता है अपकर्ष काल, तो उस काल में आप आयु को घटाया बढ़ा सकते हैं अपने परिणामों के अनुसार। नियम से होता है ऐसा, कुछ ना कुछ वो बाकी बचे हुए अपकर्ष कालों में आयु की स्थिति में अंतर पड़ता है। जैसे श्रेणिक राजा ने 33 साल अगर बांधी थी, तो फिर बाद में वो घटाते घटाते अंत में 84,000 वर्ष हो गई। तो ये वहां पर संभव है उस जन्म में, लेकिन अब जो 84,000 वर्ष में उसका जन्म हो गया, नरक में जो उसको उत्पत्ति हो गई, वहां पर वो उसको घटा बढ़ा नहीं सकता। ऐसा हमने किसी विद्वान से या किसी साधु से सुना, अभी पढ़ेंगे तो फिर और उसका आगम प्रमाण हो जाएगा। तो जब आयु वर्तमान की आयु बढ़ाई नहीं जा सकती, पूर्व जन्म की आयु की बात अलग है, और वर्तमान की आयु का कदली घात हो सकता है। कदली घात का मतलब क्या होता है? कदली यानी केला, केला एक फल है ना, उसका जो पेड़ होता है, उसका जो खेत होता है, वो फल देने के बाद दोबारा नहीं फलता, केले का जो पेड़ होता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि उस पेड़ को किसान नष्ट कर डालता है। वो पेड़ पूरा हरा भरा है, नष्ट करने लायक नहीं है एक दृष्टि से, लेकिन चूंकि किसान अपनी दृष्टि से सोच रहा है कि इसमें दोबारा केले नहीं लगेंगे, इसलिए कोई काम का नहीं, मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से सफाया करो, उसको नष्ट कर डालता है। तो फिर उसके आजू बाजू से फिर दूसरे केले के पौधे निकल आते, वो तो रहते ही केले की जड़ बहुत नीचे फैली रहती है धरती में, तो वो आप कितना भी कोशिश करो कहीं ना कहीं से कोई अंकुर फिर निकल आता है। वो तो पूरी धरती को आप फिल्टर करो, छान लो, तब जा करके वो केले की फसल पूरी तरह समाप्त हो सकती है। तो कदली घात का मतलब हो गया असमय में क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो आयु का असमय में क्षय हो सकता है कुछ जीवों में, सब में नहीं होता, और उसमें किन में नहीं होता इसका अपवाद सूत्र तत्वार्थ के दूसरे अध्याय में 53 नंबर पर आता है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, इनकी आयु अनपवर्त्य होती है, यानी उसमें अपवर्तना घात संभव नहीं है, कदली घात नहीं हो सकता उसका। जहर वगैरह खा करके अकाल में मरण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन? तो उस सूत्र में जो गिनाया है उन जीवों के लिए वो नियम है। एक तो औपपादिक जन्म धारण करने वाला, उपाद जन्म करने वाले जीवों को औपपादिक कहा है, वो देव और नरक गति के होते हैं। देव गति में जिसने जन्म लिया है या नरक गति में जन्म लिया है, वो असमय में मरण को प्राप्त नहीं होता। जितनी आयु बांध करके लाया है उतनी आयु को उतने काल में पूर्ण करेगा, ये ध्यान देना शब्द, जितनी आयु बांध कर लाया उसको उतने ही काल में पूर्ण करना वहां पर होता है, देव और नरकों में, देव गति में और नरक गति में। फिर चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम देहा माने तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान की आयु भी असमय में पूर्ण नहीं होगी। जितनी आयु वो लेकर के आए हैं, जैसे मान लो पार्श्वनाथ भगवान 100 वर्ष के थे, अब 30 वर्ष की उम्र में उनने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद 4 महीने तक तपस्या की, तपस्या करने पर अंतिम 7 दिनों तक कमठ के जीव का घोर उपसर्ग हो गया, लेकिन आयु का क्षय नहीं हो सका। भयंकर उपसर्ग किया उसने, डुबा दिया मतलब पानी में, इतना पानी बरसाया और पेड़ उखाड़ करके डाले, पत्थर डाले, लेकिन तीर्थंकरों की आयु का असमय में क्षय नहीं होता। और असंख्य वर्ष आयुष, ये एक संग्रह नय का कथन है, असंख्य मूलाचार में इसका खुलासा किया है। भले किसी जीव की आयु संख्यात वर्ष की हो, लेकिन यदि उसका जन्म भोग भूमि में हुआ है तो उसको नए दृष्टि से, एक विवक्षा से, असंख्य वर्ष आयुष कहा जाता है। जैसे नाभिराय राजा थे, उनकी आयु कितनी थी? एक पूर्व कोटि, और एक पूर्व कोटि भोग भूमि की जगन आयु होती है। आचार सार में बताया कि एक पूर्व कोटि में एक समय अधिक वहां की जगन आयु होती है। नाभिराय की आयु थी जगन आयु, भोग भूमिया थे वो। तो फिर एक पूर्व कोटि में कितने वर्ष होते हैं ये तो गिने जा सकते हैं। कैसे गिनोगे? तो 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और 1 करोड़ पूर्वों की एक पूर्व कोटि होती है। वो तो सिर चकराता है अपने हिसाब से अपन देखो तो, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर उसको गिनो, काल की कोई सीमा है क्या? पहले ये सोचो, अतीत काल कहां से शुरू हुआ और भविष्य काल कहां समाप्त होगा? है कुछ ऐसा हिसाब? कोई और छोर नहीं है काल का, तो और छोर नहीं है, तो आप सोचो कि कितना समय बीता होगा अभी तक, और ऐसे कितनी पूर्व कोटियां निकल गई होंगी, सोचो। तो उतनी जो आयु रहती है वो यहां कर्म भूमि की तो उत्कृष्ट आयु होती है, और उसमें एक समय अधिक, समय जो है उस काल का वो खंड है जिसका फिर दूसरा खंड नहीं हो सकता, सबसे छोटा भाग समय। और समय का अर्थ टाइम होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये समय जो है काल की सूक्ष्म पर्याय का नाम समय है। जैसे क्षेत्र की सूक्ष्म पर्याय प्रदेश है, काल की सूक्ष्म पर्याय समय है। तो उतनी आयु नाभिराय की थी, लेकिन वो भोग भूमिया थे, और भोग भूमिया थे इसलिए उनको संग्रह की अपेक्षा से असंख्य वर्ष आयुष्क माना गया है। तो उन जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता जो भोग भूमि में जन्म लेते हैं। आ गया समझ में? और बाकी जो जीव हैं, बाकी कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश, और फिर निगोदिया जीव जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, और फिर निष्कुट क्षेत्रों में भी है, त्रसनाड़ी के बाहर भी हैं, ऐसे एकेंद्रीय जीव, इनमें किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। हो ही ऐसा नियम नहीं, हो सकता है। अब इसमें अकाल मरण सकाल मरण के बारे में भी, जैसे ये मरण की बात चल रही है यहाँ पर अशरण अनुप्रेक्षा में, मरते से कोई बचा नहीं सकता, तो फिर अकाल मरण सकाल मरण क्या वस्तु है, ये चीज समझना भी जरूरी है। क्योंकि अभी तलोद में एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि ये बात आप समझाइए कैसे क्या है। अब एक मान्यता ऐसी भी है, एक चिंतन धारा, कि चूंकि केवली भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, जन्म मरण सुख दुख सबकी जानकारी केवली भगवान के पास होती है, इसलिए केवली भगवान के ज्ञान में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। और केवली भगवान के ज्ञान में जब कोई चीज अनिश्चित नहीं है, तो फिर जिसका जब मरण हो रहा है वो सही समय पर हो रहा है, और सही समय पर हो रहा है तो उसको अकाल मरण कैसे कह सकते हैं? ये तो सकाल मरण है। आ रहा है समझ में? लेकिन अब इसके लिए अपना प्रतिप्रश्न क्या है, इसका अपने को निर्णय करना, निष्पक्ष निर्णय, कोई ऐसा नहीं खींचातानी नहीं करना, एकदम जैसे वैज्ञानिक लोग विश्लेषण करते हैं वैसे ही अपने को समझना है, है क्या चीज है अकाल मरण सकाल मरण? मरण है ये तो सबको पता है, लेकिन ये क्या चीज है अकाल मरण सकाल मरण? तो फिर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अकाल मरण ये शब्द आया कहां से। अगर जिनवाणी के बाहर से आया हो तब तो फिर उसको उठा के फेंक दो, कोई काम का नहीं है। पर यदि जिनवाणी में ये शब्द है तब फिर ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, और जिनेंद्र भगवान जान रहे हैं कि किसका कब मरण होने वाला है, फिर भी वो अकाल मरण की बात कर रहे हैं। तो अकाल मरण का स्वरूप क्या है ये समझना आवश्यक हो जाएगा। और ये स्वरूप भी कहां से समझेंगे? जिनवाणी से। और चूंकि जिनेंद्र भगवान ने मरण के दो भेद किए हैं, इसका मतलब मरण एक नहीं है। ये भेद अगर कोई आदमी करता तो फिर अपन मान सकते थे कि भाई मनुष्य का दिमाग बहुत उथल पुथल मचाता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन चूंकि जिनवाणी में ये दो भेद हैं, और जिनवाणी में दो भेद कहाँ पर है आप ये भी पूछ सकते हैं, प्रमाण भी चाहते हैं ना बहुत सारे लोग। तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आप देखिएगा, उसी सूत्र की उत्थानिका में तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की 53वीं उत्थानिका, 53वें सूत्र की जो उत्थानिका मतलब उसकी जो भूमिका है, प्रस्तावना, उसमें देखिए, उसमें उन्होंने लिखा कि चारों गतियों में भटकने वाले और नए नए शरीरों को धारण करने वाले जीव क्या यथाकाल अपनी आयु को भोग कर गत्यंतरम आस्कंदंती उत अयथाकालम अपीति। ये संस्कृत शब्द बोल दिया हमने कि वो यथा समय अपनी आयु पूर्ण करके ही दूसरे शरीर को धारण करते हैं, अथवा अयथाकालम अपि इति, असमय में भी शरीर छोड़कर दूसरी गति में जाते हैं, प्रश्न है ये। इति अतः फिर उसके बाद में सूत्र देते हैं कि नहीं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यथाकाल ही आयु को पूर्ण करते हैं और बाकी अयथाकाल भी आयु पूर्ण करके दूसरे शरीर में जा सकते हैं। अब ये जिनवाणी के वचन हो गए। अब जिनवाणी के वचन है तो अब जितने भी तर्क अपने अंदर उत्पन्न होते हैं वो तर्क यदि इसके पोषण करने वाले हों तब तो सुतर्क है, और इसके विरुद्ध हो, इसका खंडन करने वाले हों तो कुतर्क है। जैसे खंडन करने वाला कौन सा तर्क बनेगा? एक कि केवली के ज्ञान में हर चीज निश्चित समय पर, उनके ज्ञान में स्पष्ट है कि किसका कब मरण होगा, किसका कब जन्म होगा, सब चीजें हैं उनके ज्ञान में, कब मोक्ष होगा ये भी जानते हैं, कौन सा जीव किस भव में कहां से मोक्ष जाएगा सब केवली भगवान को पता है। ऐसी स्थिति में जब केवली भगवान को मालूम है कि इसका मरण इतने बजकर, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने माइक्रो सेकंड और इतने मिली सेकंड पर होने वाला है, तो फिर वो मरण निश्चित हो गया, और निश्चित होने के कारण सकाल हो गया। ये तर्क वास्तव में थोड़ा भ्रामक है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि केवली ने जाना इसलिए उसको मरना पड़ रहा है उस समय। माने जो कारण कार्य व्यवस्था है उसमें भ्रांति आ गई है। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी केवली के जानने के कारण नहीं मरता, मरने का कारण केवली भगवान ने आउ खेण मरणम ये बताया। मरण किस कारण होता है? अपनी आयु के क्षय से। उन्होंने जाना है कि आपका मरण इतने समय पर होगा इसलिए आपका मरण हो रहा है। मरण का हेतु क्या है? उनका जानना क्या किसी के मरण का हेतु हो सकता है? अगर हो जाए तो फिर वस्तु व्यवस्था चौपट हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के जानने से कोई घटना हो रही हो। ज्ञान का काम जानना है, वो जानेगा, लेकिन उसके जानने के कारण कोई घटना हो जाए ऐसा नहीं। घटनाओं के कारण स्वतंत्र, उपादान निमित्त पर आश्रित होते हैं। इसलिए मरण का कारण केवली का ज्ञान नहीं है, एक बात। फिर दूसरी बात कि केवली भगवान ने मरण के दो भेद किस अपेक्षा से किए? अकाल मरण, सकाल मरण, ये दो प्रकार के मरण हैं क्या वस्तु? तो अकाल मरण का अर्थ है कि जितनी आयु वो लेकर के आया है, जैसे 70 साल की आयु लेकर के आया और वो 50 साल की आयु में एक्सीडेंट से मर जाता है, तो 70 साल की जो लेकर के आया था वो आयु, उसको 70 साल में पूरी नहीं कर पाया। तो अब हम एक अलग प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, अब अगर 50 साल में मर गया तो उसकी आयु कितनी बची? देखो उतावली में यही भूल होती है, उसकी आयु बची ही नहीं, क्योंकि क्या लिखा है यहां पर सूत्र, आउ खेण मरणम, 20 साल अगर बच जाए आयु तो जैन धर्म के अनुसार मर नहीं सकता। जैन धर्म मत को, जैन दर्शन के अनुसार, दर्शन यानी मान्यता, जैन सिद्धांत के अनुसार मर नहीं सकता अगर 20 साल आयु बची हो तो। फिर क्या हुआ? बड़ा सवाल उठता है, मरा 20 साल पहले और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 20 साल आयु बची नहीं, ये कैसा उलझन वाला काम है? मतलब ये तो बहुत घुमावदार बात हो गई। आयु 70 की लेकर आया था, मरा 50 में और फिर भी 20 साल आयु बची नहीं, ये कैसा गणित है? तो उसका जवाब बड़ा सुंदर है। पेट्रोल पंप देखा आपने? पेट्रोल पंप में एक टैंकर आता है बीच बीच में, आता है और उस टैंकर से अंडरग्राउंड एक टंकी होती है जहां पेट्रोल भर करके रखा जाता है, और पेट्रोल जब भरते हैं तब आसपास के वातावरण में भी उसकी गंध, गैस की आती है, पेट्रोलियम गैस की गंध, और उसको टैंकर से वहां नीचे पहुंचाने के लिए एक मोटा होज पाइप लगा करके फिर ट्रांसफर किया जाता है, और वहाँ जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि एक टैंकर को खाली होने में कितना समय लगता है, ठीक है ना? बस उसी प्रकार अपन सब टैंकर हैं, आयु कर्म रूपी पेट्रोल निषेक के माध्यम से अपने जीवन के एक एक क्षण रूपी उसमें होज पाइप के थ्रू जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो जो टैंकर है उसमें पेट्रोल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्षण प्रतिक्षण कम होता जा रहा है, और जानने वाले जानते हैं कि कितने समय में ये टैंकर खाली हुआ। अपने को पता ना हो अलग बात है, लेकिन एक निश्चित समय में वो उस क्रम से अगर खाली होता है तो खाली हो जाएगा। ये यथाकाल मरण का दृष्टांत हो गया, और वो टैंकर पेट्रोल पंप के पास आ रहा है, यदि उसमें लीकेज हो जाए तो, यदि टैंकर फट जाए तो, जैसे मान लो उसमें से आधा पेट्रोल तो उसमें चला गया नीचे, लेकिन जब आधा बचा तो पता नहीं कोई खराबी आ गई तो फिर वहां नीचे नहीं जा सका पेट्रोल, टैंकर फूट गया। तो अब टैंकर फूटने पर जो बाकी रह गया था पेट्रोल, क्या वो वहां पर बचा रहता है? उसी प्रकार एक्सीडेंट होने पर जो 20 साल की आयु बाकी रह गई थी, क्या वो वहां पर बची रहती है? दृष्टांत से समझ में आती है ना बात? तो जिस प्रकार वो पेट्रोल टैंकर फट जाने पर इधर उधर बिखर जाता है, वहां कुछ भी नहीं बचता, उसी प्रकार एक्सीडेंट आदि होने पर भी मनुष्य जितनी आयु लेकर के आया, अथवा जो भी अकाल मरण को प्राप्त होने वाला जीव जितनी आयु बांध करके लाया था, वो वही अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाती। 50 साल की उम्र में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो 20 साल की आयु के जितने निशेक हैं वो निशेक कदली घात के द्वारा उसी अंतर मुहूर्त में पूरे झड़ जाएंगे वहां पर। 20 साल की आयु बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जैन सिद्धांत के अनुसार, वही नष्ट हो जाएगा पूरा। निश्चित जान रहा है तो केवल ज्ञानी उन ये भी जान रहे हैं ना कि वो मरण कौन सा है। तभी तो उनने उपदेश में दो मरण बताए ना, नहीं तो एक ही बताते, भाई मैंने जाना है इसका, इस समय मरण होना है, सब मरण सकाल है उसके, क्यों भेद क्यों करना। नहीं, मरण किस कारण से हो रहा है। ठीक है, जाना है ना? फिक्स है। ये बहुत सुंदर प्रश्न आ गया। देखो, केवली भगवान ने जितनी घटनाएं जानी हैं, जन्म मरण निर्वाण और फिर चारों गतियों में जीव का भ्रमण, ये सब कुछ केवली भगवान ने जाना है। तो उन सब घटनाओं को जानने के साथ साथ केवली भगवान ने एक बात और भी जानी है, उनके ज्ञान में कुछ छूटा नहीं है। किस घटना का कारण क्या है उसको भी केवली भगवान ने जाना है, सिर्फ घटनाओं को नहीं जाना। जैसे मान लो कोई समझ ले कि केवली भगवान ने जब मेरा मोक्ष देखा होगा तब मैं मोक्ष चला जाऊंगा, मुझे अभी से क्यों माथा पच्ची करनी, क्या जरूरत है मुझे, अभी तो अपना मजे से रहो। जब मेरा मोक्ष केवली भगवान के ज्ञान में आया होगा उस समय मुझे मोक्ष मिलेगा, अभी से क्या उठा पटक करना। तो अब अपने मन से ये पूछना कि केवली भगवान ने जो मेरा मोक्ष जाना है वो किन कारणों से होगा मोक्ष, ये और पता कर लो। क्या उनने अकेला मोक्ष जाना है या पुरुषार्थ से मोक्ष जाना है, बिना पुरुषार्थ के मोक्ष होगा ये जाना है क्या केवली भगवान ने, या पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष होगा ये जाना है। यदि पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष होगा ऐसा जाना है तो फिर मुझे तो पता नहीं है कि कब मोक्ष होगा, इसलिए मेरा क्या फर्ज हुआ। यदि मुझे मोक्ष जाना हो तो फिर मुझे क्या करना है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। जब मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है तो फिर मेरा तो एक ही फर्ज बाकी रह जाता है कि मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए केवली भगवान के ज्ञान के आधार पर अपन पुरुषार्थ का लोप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक नियति नय नाम का नय है। जैन सिद्धांत में अनेक प्रकार के नय हैं, एक काल नय है। तो काल नय और नियति नय की अपेक्षा से अगर विचार किया जाए तो फिर स्यात, ये साथ में और लगाना, स्यात नहीं लगाओगे तो फिर नियतिवाद नाम का मिथ्या मत हो जाएगा, स्यात नहीं लगाओगे तो कालवाद नाम का एक मिथ्या मत हो जाएगा, स्यात लगाओ कि किसी अपेक्षा से हर चीज निश्चित है। लेकिन उसी का दूसरा पक्ष क्या कहता है, अनियति नय। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ के अंत में 47 नयों द्वारा आत्मा का चित्रण किया है। समय सार की टीका में उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया। तो 47 नयों में एक अनियति नय, अकाल नय, इसका भी वर्णन किया। माने वही आत्मा अकाल नय की अपेक्षा से या अनियति नय की अपेक्षा से अनियत है, नियति नय की अपेक्षा से नियत है। अगर कोई एकांत से ऐसा ग्रहण कर ले कि नहीं सब कुछ नियत ही है, नय की अपेक्षा से नियत ही है कहना अनुचित नहीं है। पर उसके साथ पहले एक चीज और जोड़ना पड़ती है कि स्यात, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। अपेक्षा रहित अगर आप करते हो तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत। निरपेक्ष नए जो होते हैं उसी का नाम मिथ्या है, और जो सापेक्ष होते हैं दूसरे नए को मेटते नहीं पूरी तरह से, वो तीर्थ कृत। आपके मत में वो जो नए हैं सापेक्ष नए, वो अर्थकृत यानी सार्थक है, व्यर्थ नहीं है, वस्तु को जानने में सहायक है। तो ये जो नए हैं ये तो समझने के तरीके हैं। अब समझने के जो तरीके हैं उसमें से अपन एक बात को पकड़ करके बैठ जाओ तो पूरी बात कैसे समझ में आएगी। इसलिए ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस मरण में आयु अपनी अवधि में पूर्ण न हो करके, जैसे वो निषेक रचना जो होती है ना, वो निषेक रचना